हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 36 एंड 37। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा उर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 16 जिसका शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वार पालों जय और विजय को मुनियों द्वारा शाम। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा था कि सारे देवता बहुत परेशान हो गए थे और वो सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में इतना अंधकार हो गया है, हम अपना काम भी सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इतने अपशकुन हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कश्यप और अदिति के विषय में बताया कि कश्यप और अदिति जो हैं वो अदिति ने अस समय संध्या के समय संभोग करने की इच्छा की जिसके कारण दो असुर उनके गर्भ में आ गए। और वो असुर कौन थे उसके विषय में बताया कि ये दो असुर कौन थे, जय और विजय भगवान के द्वारपाल जिनको चतुष्कुमार ने श्राप दिया था। उसका कारण भी बताया कि इसका कारण केवल ये था कि भगवान जो है वो वीर रस का आनंद लेकर इस भौतिक जगत में लीला करना चाहते हैं और जो भी भगवान के धाम से नीचे आता है उसके लिए भगवान स्वयं सतोष कुमार को कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओगे तो मैं पुनः आऊँगा, आपको वापस अपने धाम जल्दी लेके जाऊँगा। इतनी सारी कथा बताने के बाद अब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि आज जो आपकी शक्ति कम हो गई है, आप इतने विचलित हो गए हो, आपसे अपने कार्य सही तरह से नहीं हो रहे ना, उनका कारण ये जो दो असुर हैं ना, जो कि कश्यप और अदिति के यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षुभ, वो दोनों असुर ही इसका कारण है। लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इनका कोई उपचार कर सकूं, क्योंकि ये भगवान की लीला है, तो भगवान स्वयं ही ये सब करना चाहते हैं और भगवान अपनी लीला अपने अनुसार करेंगे, तो मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, केवल भगवान ही कर सकते हैं। श्लोक नंबर 36। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, तयोरा सुरयोरथ्या तेजसा यमयोर्हिवा आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान् तद्विदित सति तयोरसुरयोरथ्या तेजसा यमयोर्हिवा आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान् तद्विदित सति तयोर अर्थात उन असुरयो यानी दोनों असुरों के अद्य यानी आज तेजसा यमयोर ही वा तेजसा यानी तेज से यमयो यानी जुड़वों का ही मन निश्चय ही वा यानी तुम सारे देवताओं का आक्षिप्तम तेज एतर ही आक्षिप्तम मतलब क्षुब्ध कर दिया है तेज यानी शक्ति एतर ही इस प्रकार निश्चय ही भगवान तद विदित सती भगवान यानी भगवान तद वह विदित सती करना चाहते हैं। ये भगवान की लीला है। अनुवाद, यह उन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष जो पहले जय तथा विजय थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके, अतएव ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे ना ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते थे। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे और वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की उपेक्षा अधिक बलशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक हैं, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होगा, इसीलिए उनकी इस इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सकें। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा ही हो सकेगी। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि भगवान किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखते जब तक कि वो उसका भक्त न हो। भगवान को यदि युद्ध भी करना होगा ना, तो उसके लिए भी उसका अपना ही भक्त चुनेंगे, क्योंकि भगवान तो जो भी करते हैं वो लीला ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्योंकि वीर रस का आनंद लेना चाहते थे, इसीलिए जय और विजय को इस भौतिक जगत में भेजा, और सारे देवता भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते, उनको परास्त नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी साफ साफ कह दिया कि मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब असुर आ जाते हैं और वो देवताओं को भी परास्त कर देते हैं, ये कैसे हो जाता है। वास्तव में ये कोई साधारण असुर नहीं होते हैं, ये भगवान के धाम के, भगवान के पार्षद होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि भगवान के धाम से जो शापित होकर पार्षद इस भौतिक जगत में आते हैं, उनके अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि वो सारे देवताओं को परास्त कर सकते हैं। तो जो भक्त भगवान के धाम में रहते हैं, उनके अंदर कितनी शक्ति होगी, या साक्षात भगवान के अंदर कितनी शक्ति होगी कि उनके धाम के जो सेवक हैं उनके अंदर भी कितनी शक्ति है। तो ये सब भगवान की लीला होती है, जिसके कारण भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे धाम में आने के बाद जीव कितना सशक्त हो सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण वे सभी विचलित थे, परमेश्वर की इच्छा थी। वे यह दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रण नहीं कर सके। कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। देवताओं को यह भी सलाह दी गई है कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह भगवान द्वारा आदेशित थी। इसलिए इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की इच्छा होती है ना, उसके रोकने के लिए कोई सामर्थ्य किसी के पास नहीं होता है। जो व्यक्ति इस जगत में कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, और यदि भगवान उससे वो सेवा लेना चाहते हैं, विशेष रूप के वे यदि कोई भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहता, यदि उसका उद्देश्य केवल भगवत भक्ति को बढ़ाना है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसका प्रतिकार नहीं कर सकती, क्योंकि सभी परिस्थितियों में भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं, और ये भगवान की इच्छा होती है। इसीलिए वो भक्त की पूरी पूरी सहायता करते हैं, और हर स्थिति में भगवान की ये इच्छा पूरी होकर ही रहेगी, चाहे संसार कितना ही विरोध करे। और अंतिम श्लोक में ब्रह्मा जी देवताओं को अत्यंत ही सुंदर शिक्षा देते हैं कि भगवान तो समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, सृष्टि पालन और संहार के उत्तरदायी हैं। इसलिए भगवान अपनी जो योग माया शक्ति है उसको नियंत्रित करने वाले हैं। भगवान के इन कार्यों को कोई समझ नहीं सकता। बड़े से बड़े ऋषि मुनि हैं, चाहे कितने ही महान भक्त हैं, कुछ भी हैं, वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते। और संसार में जो कुछ भी घटना हो रही होती है, वो भगवान के कंट्रोल में होती है। इसलिए यदि किसी को भी कोई कष्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, और जो कुछ भी संसार में हो रहा है, भले वो हमारे अनुकूल हो या विपरीत हो, हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। सदैव ये याद रखना चाहिए कि भगवान हर एक परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हर एक क्षण हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भक्त को हमेशा निर्भय रहना चाहिए, और हमेशा संतुलित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की ही इच्छा से होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुरात्यो യോഗേശ്വരൈരപിതുരയോഗമായ ക്ഷേമം വേദാസ്യതി സനു ഭഗവാസ്ത്രധീശ തത്രാസ്മദീയ വിമൃഷേണ കിയ നിഹാര്യ വിശ്വസ്യ യഃ സ്ഥിതി ലയോദ്ഭവ ഹേതുരാദ്യോ യോഗേശ്വരൈരപിതുരത്യയ യോഗമായ ക്ഷേമം വേദാസ്യതി സനോ ഭഗവാസ്ത്രധീശ തത്രാസ്മദീയ വിമൃഷേണ കിയ നിഹാർത്ഥ ശബ്ദാർത്ഥ विश्वस्य यः विश्वस्य यानी ब्रह्मांड का यह मन जो स्थिति लय उद्भव स्थिति मतलब पालन पोषण लय मतलब विनाश उद्भव मन सृष्टि हेतु यानी कारण आद्यो यानी सबसे प्राचीन पुरुष योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमाया योगेश्वर योगियों के स्वामियों द्वारा अपि भी दुरत्यय आसानी से समझा नहीं जा सकता योग माया उनकी योग माया शक्ति को क्षेमं वेदास्यति सनु भगवांस्त्रयदीश क्षेमं कल्याण मंगल वेदास्यति करेंगे सह वह न हमारा भगवान यानी वो भगवान है त्रयदीश तीनों गुणों से नियंत्रण हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अवश्य हमारा कल्याण करेंगे क्योंकि वो संसार के पालन उद्भव और सृष्टि के लय के समस्त कार्यों को स्वयं करने वाले हैं और उनको कोई जान नहीं सकता क्योंकि वो योग माया के द्वारा आच्छादित होते हैं तत्रास्मदीय विमृशेन कियानि हार्थ तत्र वहाँ अस्मदीय हमारे द्वारा विमृशेन विचार विमर्श कियान किया यह इस विषय में अर्थ यानी लाभ अनुवाद ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को समझाते हुए कहते हैं हे प्रिय पुत्रो भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं श्रीला प्रभुपाद की इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो इससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए वास्तव में भक्तों हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना हो रही है उसकी वास्तविक व्यवस्था भगवान के द्वारा हुई है भले ही हमारे कर्मों के द्वारा हमको जो प्राप्त हो रहा है जो दुख है सुख है चाहे वो सिचुएशन हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है जो भी सिचुएशन है जो भी व्यवस्थता है वो भगवान के द्वारा की गई है इसलिए जीव को हमेशा हमेशा शांत रहना चाहिए विचलित नहीं होना चाहिए भले ही आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों ना लगे उदाहरणार्थ कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था प्रहलाद महाराज को अनेका अनेक यातनाओं से गुजारना पड़ा कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिनाई और यातनाओं उठानी पड़ी इन पराजयों से भक्त को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई ना कोई योजना होगी। तो कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं भगवान के भक्त कितने दुखी होते हैं, उनके ऊपर कितने कष्ट आते हैं, उनके ऊपर कितने संकट आते हैं। जहाँ भगवान का भक्त नाम होता है ना, उस भक्त के साथ संकटों की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट होते हैं। हम देखते हैं जिस भी भक्त के बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो पांडव हो, कुंती महारानी हो, चाहे कोई भी भक्त होते ना, उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। ये कठिनाइयाँ तो हमें दिखती हैं, मगर उन कठिनाइयों में भगवान किस प्रकार से उनकी सहायता करते हैं वो देखना हम भूल जाते हैं। इसे कुंती महारानी बहुत बहुत सुंदर कहती हैं, भवतु दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कठिनाइयाँ तो हमारी सहायक हैं कृष्णा, क्योंकि इन कष्टों के द्वारा तुम कितने निकट आ जाते हो, और जब तुम निकट आ जाते हो फिर कठिनाई दुख संकट वो आनंद में बदल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सचित आनंद है। इसे हमें भक्तों के दुखी अवस्था को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ये समझना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई ना कोई योजना होगी। और जब भक्त के ऊपर संकट आता है और वो भगवान को पुकारता है, भगवान जब उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आते हैं, उस समय भगवान के आने से उस भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, जो विश्वास है, वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और उस विश्वास और श्रद्धा के बढ़ जाने से उसका हृदय कितना आनंदित और कितना अभय, उसको कितना आनंद आता है, और किसी भी वस्तु का भय नहीं लगता, उसको लगता है कृष्ण है ना, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। तो ये दृढ़ विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान भक्तों के साथ ये छोटे छोटे खेल करते हैं, ये भगवान की लीलाएं हैं, ताकि भक्त और भी अधिक विश्वास करें, और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझसे और भी निकट आता जाए, ताकि भावबंधन से छूट सके। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता, वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोक को वापस जाएगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवत का जो निष्कर्ष है वो यही है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो विपरीत स्थिति जो उनके अनुकूल नहीं होती है, उसमें कभी विचलित नहीं होते हैं। हमेशा विश्वास रखते हैं कि भगवान अवश्य मेरी सहायता करेंगे, वो मेरे हैं, वो क्यों नहीं मेरी सहायता करेंगे। इसलिए गुरु महाराज सदैव कहते हैं कि परिस्थिति को मत देखो, बस हर समय कृष्ण को कहो धन्यवाद, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। यही समस्त शास्त्रों का सार है, यही समस्त उपनिषदों वेदों का सार है कि हमें भगवान की हर एक बात में आनंद आए, चाहे वो फूल हो या कांटे, भगवान ने दिए हैं तो सिरा आंखों पर स्वीकार करने चाहिए कि हाँ कृष्ण, तुम्हारी हर सौगात मुझे स्वीकार है, क्योंकि तुम जो भी दोगे उसी में मेरा कल्याण है। थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। जैसा भी समय है, जैसी भी परिस्थिति है, चाहे प्रतिकूल है चाहे अनुकूल है, चाहे मुझे विजय प्राप्त हो चाहे पराजय प्राप्त हो, चाहे मुझे मान प्राप्त हो या अपमान प्राप्त हो, जैसी भी स्थिति है कृष्ण, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, मुझे अपने नाम से दूर मत करना, मुझे अपने भक्तों से दूर मत करना, मुझे अपनी कथाओं से दूर मत करना। बाकी बाकी तुम मेरे साथ कैसा भी करो, चाहे मुझे गाढ़ आलिंगन दो या अपने पैरों से कुचल कर मेरा हृदय तोड़ दो, तुम जो चाहो सो करो, बस तुम मेरे रहना, मैं तुम्हारा रहूं। फिर मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोक को वापस जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं है कि अंधकार की विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे भगवान के महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते थे। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पहला भाग समाप्त होता है। ये सब आप सबकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद से हो रहा है, ये श्री प्रभुपाद जी की कृपा और गौरंग महाप्रभु की दया से हो रहा है। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, आप सबसे एक ही निवेदन है कि बस मेरे लिए एक ही प्रार्थना करना भगवान से, कि मैं मरते दम तक उनकी सेवा करती रहूं। बस कृष्ण मरते दम तक मुझे अपनी सेवा में लगाए रखें, चाहे कहीं किसी भी योनि में कहीं पर भी मुझे जन्म मिले, बस भगवान का नाम, भगवान की सेवा कभी ना छूटे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।